Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur tum jo srishti karte ho, wo लय में तुम्ही में समा जाती है, हम सृष्टि करते हैं सो हम में समा जाती है। तो बात तो एक ही हुई, हम तुम तो बराबर ही हुए। ईश्वर ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, तब तो फिर घबराने की बात हो गई। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हारी सृष्टि हमारी सृष्टि में कुछ फर्क नहीं। बोले कहा फर्क, जैसे तुम आकाश पाताल बना देते ऐसे हम आकाश पाताल बना देते। तुम अपने अपने संकल्प से बनाते हो और मैं अपनी वासनाओं से बनाता हूं। हां इतना जरूर है कि तुम्हारी सृष्टि थोड़ी स्थिर रहती है कुछ काल तक, हमारी सृष्टि भी हमारे काल तक स्थिर रहती है। जब तक व्यक्ति सोता रहता है तब तक सृष्टि रहती है। तो बोले फिर कुछ फर्क नहीं। कहा फर्क नहीं है, बिल्कुल हम तुम बराबर। तो बड़ा सोच विचार में पड़ गए भगवान। सोचा करे तो अच्छा आ गया, बड़ा सृष्टि हम तुम बराबर है। जैसे वो केवट कह रहा था हम तुम बराबर, मैं इस घाट का मालिक हूं तुम उस घाट के मालिक हो, तुम पार करते हो हम भी पार करते हैं, दोनों हमारी तुम्हारी सर्विस एक। तो जाति भी एक होनी चाहिए। तो वास्तव में मन में क्या है कि जगत क्यों सत्य मानते हैं? जगत इसलिए सत्य मानते हैं कि ये जगत, बल्लभाचार्य जी महाराज की बात कर रहे थे कि जगत और संसार दो कर दिए, एक अपनी सृष्टि है मैं मेरा बना लिया, एक ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की सृष्टि में कोई दुख नहीं है आपको, नदी पर्वत पहाड़ बेटा बेटी नर नारी वो तो सब हैं ईश्वर की सृष्टि, उसमें तो कोई किसी प्रकार का नहीं। जो तुमने अपनी बना ली है कि मेरा ये है, जैसे पेड़ है, अब पेड़ आपको दुख नहीं देता है, और जो पेड़ तुमने लगाया मेरा कह दिया, उसमें से कोई दातून ले ले फिर देखो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये जो दुख देने वाला होता है तो वो मेरा पना होता है, ईश्वर की सृष्टि में दुख नाम की वस्तु नहीं है। दुख बनाए नहीं भगवान ने और ना भगवान की दुकान पे दुख है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा तुम भी दोहरा लो, बोलो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ज्ञानार्जन करो और करने दो, आनंद में रहो और रहने दो। देखो ये तो हो गया पुण्य, अब इन्हीं को उलट दो तो हो जाएगा पाप। किसी को अपमानित करो, किसी को गाली दो, किसी को मारो तो ये पाप हो जाएगा। अब किसी को ठगो और खुद ठगने से डरो, क्योंकि तुम तो चित्त स्वरूप हो, तुम ठग कैसे सकते, तो ये पाप हो जाएगा। आ किसी को दुखी करो, चलो ये तो है ही, स्वयं भी दुखी हो तो भी पाप है। अरे नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप तुम हो, आत्मानंद हो, और आनंद हो करके तुम दुखी हो रहे, तो ये दुखी होना अज्ञान का कारण है। अभी निवेदन किया गया कि अज्ञान का आश्रय जीव है और अज्ञान का विषय ये जगत है, मेरा मेरा तेरा है, संसार है, जो कि सरक रहा है। देखो कैसी बढ़िया बात है कि संसार को जगत को आप पकड़ नहीं सकते और इसको जीव को छोड़ नहीं सकते, आत्मा को एक को पकड़ नहीं सकते, पकड़ के रख नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश करो पकड़ने में नहीं आएगा। ये तो यह सरकता रहता है, उसका नाम ही संसार है, सरक रहा है सरक रहा है, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। एक शब्द आया धनंजय, धनंजय अग्नि को कहते हैं, और 10 प्राण जो होते हैं कृकल देवदत्त धनंजय, धनंजय प्राण भी है और अर्जुन का भी नाम है। तो भगवान यहां संबोधन धनंजय का करते हैं। धनंजय अग्नि होती है, धनंजय प्राण होता है, और वो प्राण जीवात्मा जब शरीर मुर्दा मर जाता है तब भी रहता है, तब भी चेतन है। जैसे बल्ब में और कोयला में क्या फर्क है, भाई बल्ब भी पार्थिव है, कोयला दीवाल भी पार्थिव है, लेकिन बल्ब में जो जब ज्योति लगती है, बिजली लगती है तो चमकने लगता है, और कोयला में नहीं चमकता है, बात क्या है। तो जो जितना निर्मल होता है उसमें उसका प्रभाव होता है, ये नहीं कि बिजली ना हो, ऐसी बात नहीं है, वो तो दूसरा बल्ब लगा दो जल जाएगा। इसी तरह से मुर्दा में भी सामान्य चेतन तो है, दूसरा शरीर जोड़ दिया होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि ना हो, वो तो है। कोयला में और बल्ब में कोई फर्क नहीं, दोनों पार्थिव, लेकिन एक में प्रकाश है एक में प्रकाश नहीं है, एक निर्मलता का फर्क है। तो वो यहां मंत्र बोल रहा है, एतस्मा जायते प्राणः मनः सकलेन्द्रियाणि च, संपूर्ण मन बना और इंद्रिया बनी। अब देखो इंद्रियां जो हैं, इदम दाह ये बनता है, तो इति ये उणादि में बनेगा, इंद्रिय इंद्री शब्द है, इदम द्रह इति इंद्रह इति परमेश्वर रे। इंद्रियों में क्या विशेषता है आप देखिए, इतनी तो कमजोर है कि एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती। कभी कान गड़बड़ हो जाए और कहा है, हे नाक जी आप हमारा काम 2 दिन कर लेना, हम जरा टाइम से आ जाएंगे, कर लेगी क्या? नहीं कर सकती। एक इंद्री दूसरे इंद्री की मदद नहीं कर सकती, घोर झगड़ा है आपस में, कहा एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारे फायदा क्या, बोले फायदा हो चाहे नुकसान हम मदद नहीं कर पाएंगे, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये टूटती फटती रहती। इंद्रिय आज कोई जरूरी थोड़ी है कि काम करती रहे, देखते देखते आंख देखने लायक रह जाती है, कान सुनते सुनते सुनने लायक नहीं रह जाते, ये दशा है, पैर चलते चलते चलने लायक नहीं रह जाते, परियां टटो टटो चलते, और एक दिन हिरण की तरह दौड़ लगा रहे थे, ये क्या है? इसका मतलब इतनी कमजोर हैं, इनमें एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं है, और जब चाहें तो बिगड़ जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं, और उनके लिए बड़ा आकर दिखाते। तो आप पहले तो ये बात निश्चित याद कर लो कि ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, वो उनके लिए बनाई जिनको जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिनको रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है वर्तमान में, उसके लिए रस्सी में सांप है, और जिसको भ्रम ही नहीं है, अज्ञान है ही नहीं, आत्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनको तो जगत तीनों कालों में है ही नहीं। त्रिकाला बाधित्वम सत्यम, तीनों कालों में अबाधित रूप जो होता है वही सत्य होता है। तो तमाम परिवर्तनों को, मन के परिवर्तन को, प्राण के परिवर्तन को, इंद्रियों के परिवर्तन को, देखने वाला टुकुर टुकुर देख रहा है वो जीवात्मा है, इनको अपना मानता है लेकिन देखता रहता है। तो जिसको तुम पकड़ न सको वो तो है संसार शरीर, और जिसको छुड़ाने पर भी न छूटे वो है जी आत्मा, जीवात्मा, दोनों में बहुत फर्क है, और दोनों भगवान के हैं। ये भगवान ने अपरा प्रकृति इसीलिए बता दी, ये छाती ठोंक कहने लगते मेरा है, अरे तुम्हारा कहां से? तो भगवान कहते हैं हमारी भाई अपरा प्रकृति है, ये हमारी जगह पर कब्जा कर रहे हो, ये तो घोर बेईमानी। मट्टी पानी आग हवा से जो कुछ भी बना है सामान, वो सब भगवान का है कि आपका है? बोलो भाई। कह तो रहे अपना, छाती ठोक के कहते हमारा, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा ये तिजोरी, हमारी फ्रिज। अब देखो साहब, मुकदमा लड़ेगा भगवान, तिजोरी वाला जी के यहां जाएगा मुकदमा। अब देखिए ना, चीज तो वो कह रहा है हमारी है अपरा प्रकृति भाई, मट्टी पानी आग हवा अष्टधा प्रकृति सब अपनी बता रहा। अब बड़े छाट से कहने लगे मेरा मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारा मन कहां से आ गया भाई? भगवान तो कहते हैं अष्टधा प्रकृति हमारी है। और बोले जीवात्मा, बोले वो भी हमारा है। एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है, हमारा है दोनों। अपरियम इतस्त्वन्याम कौन जीव भूता महाबाहो प्रकृतिम विद्धि मे पराम। मेरी प्रकृति पर प्रकृति देखो वो कैसी है? बोले याद हर्यते जगत, जिसने ये जगत को अपना धारण कर रखा है वो जीव है। जगत को धारण नहीं, धारण कर रखा है। यया धार्यते, जिस जीवात्मा ने ये सारा संसार अपनी खोपड़ी पर धर रखा है, जैसे कुली धरता है। कुली का सामान होता नहीं है, देखो मजे की बात, सामान तो तुम लोगों का होता है, सेठ लोगों का। एक मैंने स्टेशन पर मैं यही देखता हूं, जरा कुछ पहले पहुंच के जरा सी बिल्कुल अटैची एक जो बड़े मजे से पकड़ी जा सकती है, तो कुली ला दें, उसमें कागज पत्र और नोट वोट भी होंगे, आप पीछे पीछे चल रहा और जरा सा वो जल्दी इधर उधर हो जाए और ले चल जाए तो बाबूजी पीछे ही मलते रह जाए, रूमाल से हाथ पोंछ लें और क्या करें। इतना सामान भी नहीं आदमी ले जा सकता है, तो जैसे वो सामान नहीं ले जा सकता और कहता है अकड़ के हमारा और लादे हैं कुली, वही दशा ये है। कुली लादे हैं, ये जीवात्मा है। क्या तमाशा है। और वो टिकट भी नहीं उससे लगता है, वो टिकट जो कहेगा कि मेरा है उसको लगेगा। अब आप लोग तो नहीं कहते होंगे, खैर हाँ सत्संगी हैं भाई। जरा सोचो तो कि जो सामान तुमने कुली पर लाद रखा है वो सामान उसका है ही नहीं, वो तो दूसरे का है, वो पीछे पीछे चल रहा है उसका है। विषय करण सुर जीव समेता विषय, विषय करण सुर जीव समेता विषय, सकल एक ते एक सचेता सकल, सब कर परम प्रकाशक जो ये सब कर, राम अनादि अवधपति सोए राम, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि, प्राण का मन का इंद्रियों का प्रकाशक तो आत्मा है। तो जैसे कुली लादता है उस पर टिकट नहीं लगता है, क्योंकि वो टिकट जो कहेगा मेरा है उसमें लगेगा, और उसमें अफीम निकल आई 2.5 किलो तो डंडा उस पर कुली पे चलेगा कि जिसको कहेगा मेरा उस पर चलेगा। इसी तरह से कर्म का बिस्तर है, इस कर्म के बिस्तर को लादने वाला जरूर है, वो लाद रहा है, लेकिन जो कहेगा मेरा तो कायदे से ठाकुर जी पे डंडा पड़ना चाहिए, भगवान ठेका लेते हैं कि हमारी प्रकृति है दोनों। डंडा जो लगे तो उन पे लगे, कह दे भाई हमें उस लगेगा। हाँ लगे जरूर है अगर ईमानदारी से कहा। एक बार एक सेठ से गाय मर गई तो झट हत्या आई। जमदूत आए बोले चल नरक में चल, तूने हत्या की। बोले हमने क्या किया, हाथ ने की, हाथ का, हाथ ने की, और हाथ का देवता इंद्र है, जो इंद्र को पकड़ो जाए। इंद्र के पास पहुंचे, भैया तुम तो कह रहा हो हाथ ने किया, प्रकृति का है खेल ये। बोले हमें हमारी क्या गलती, हम तो जो विष्णु भगवान कहते हैं वो हम करते हैं। वो विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास पहुंच गई, बोले भाई वो इंद्र तो कहता है कि हमें तो जैसा आदेश मिला वैसा हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक, हमारी है वाकई प्रकृति, हाथ हमारा है, ठीक है। अब वो वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके गए तो देखा कि बाग बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण देवता पहुंचे लकड़ी टेकते हुए, और जब वहां पहुंचे तो कहा अरे सेठ जी ने स्वागत किया, भाई जय सीताराम। अरे ये बाग तो बहुत अच्छा दिख रहा। हाँ महाराज आपकी कृपा से सब बना है, तो ये बड़ी बढ़िया बढ़िया फूल हैं, बड़ा बढ़िया। हाँ दिखाते चले गए, सेठ जी उतर पड़े पड़े बड़ी जल्दी। और ये सब है, अरे बड़ा बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए गए, काय काय के हैं, सब बता दिए। ये जामुन का है, ये आम का है, ये नीम का है, ये है। और वहीं चलते चलते कुआ भी खुदा था। अरे बोले ये कुआ तो बहुत बढ़िया, हिसाब इस तो बहुत गहरा। बोले बड़े महाराज बड़ी मेहनत से खुदवाया। अच्छा आपने खुदवाया? हाँ हमने खुदवाया, सब आपकी कृपा से बना। अच्छा कृपा हमारी खुदवाया आपने? कहे हाँ वही बात। तो फिर वो गाय पड़ी थी वहां। अरे राम राम ये गाय किसने मार डाली? अब सेठ जी चुप। तो उनसे कहा विष्णुदूत संग ही थे जमराज, उनके पकड़ो इसको, ये कह रहा है हमने। अरे जब कुआ तुमने खुदवाया, गाय तुमने बाग बनवाया, तो गाय किसने हाथ ने मारी है? तो भगवान कहते तो जरूर हैं ये हमारी परापरा प्रकृति है, लेकिन मानते कहां हो? अब शायद आज से मान जाओ भाई, हम कह नहीं सकते। मान जाए तब ना, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान ठोंक बजाए कहते इंद्रियों में मन मैं हूं, आ कहते मेरा मन नहीं लग रहा। कहां लगाना चाहते हो भाई? अच्छा मजे की बात एक ही है कि जिस समय माला लेके बैठते हैं महाराज, उस समय जरूर भागता है। तो हमने पूछा नोट गिनने में भागता? बोलना ना ना वो तो नहीं गिनता। नोट गिनने में तो बड़ी सावधानी, क्यों मैं कोई नुकसान नहीं। तो मन जहां महत्व देता है, जरूरी समझता है, उसके न लगने से नुकसान मानता है, वहां मन लगता है। कहे नोट गिनने में अगर मन नहीं लगेगा तो एक आध नोट सौ का निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए वहां नुकसान है। ऐसे ही अगर आपका मन ये समझे कि यदि अभी जप नहीं करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, ये चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति न चेद अवेदीन महति विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर मन नहीं लगेगा। ये बात मन ने सोची कभी? इसलिए भगवान ने कहा, और ये अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए कहा है, जिससे बोले ये आप निश्चित समझ लो, बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता, भ्रम कभी निर्धिष्ठान नहीं हो सकता, जब होगा तब अधिष्ठान सहित होगा। कहीं न कहीं रस्सी है तब न सांप का भ्रम हुआ। तो जिसको सर्प सत्य मालूम पड़ रहा है, भयभीत हो रहा है, डर रहा है, उसको ये बता दिया जाता कि रस्सी में सांप है। ऐसे ही जिसको जगत सत्य मालूम पड़ रहा है, जिसको जगत भयभीत हो रहा है, भय दुख दे रहा है, उसके लिए कह दिया गया जगत परमात्मा से पैदा हुआ है, जिससे कार्य कारण रूप से परमात्मा अद्वितीय सिद्ध हो जाए। और ये पंच महाभूत और विश्वस्य धारणी पृथ्वी, ये आकाश पाताल और पंच तन्मात्रा बताए, सारे विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से बनी। पृथ्वी कोई अन्न भी उपनिषदों में कहीं कहीं कहा गया है, क्योंकि अन्न पृथ्वी से पैदा होता है, लगते चारों भूत हैं उसमें। कहे जब पौधे लगाते हो तो उसमें प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए और वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, चाहिए तो सब। लेकिन कह दिया गया पृथ्वी विश्वस्य धारणी, विश्व माने पांचों महाभूत हो गए। तो अब एक बात इसमें आई, आकाश के पास से ये चारों भूत गए, बोले भाई ऐसा है हम तुम समझौता कर लें क्या? बोले हमारा से भी कुछ ले लो। तो आकाश ने कहा कि हमसे सब ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो आकाश ने दे दिया अपना वायु को शब्द, वायु ने कहा हमारी भी थोड़ी चंचलता ले लो। बोले ना 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 मुझे जरूरत नहीं, तुम अपना रखो। तो वायु के पास शब्द तो है और अपनी चंचलता भी है, लेकिन आकाश का कुछ नहीं। आकाश ने अपना तो शब्द दे दिया, आकाश ने नहीं लिया। फिर तेज के पास आए, तेज ने कहा कि हमारा भी कुछ ले लो। बोले मुझे नहीं जरूरत, तुम हमारे से ले जाओ। शब्द स्पर्श रूप ले लिया, और जल के से गए तो जल ने भी ले लिया, पृथ्वी में ले लिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब पृथ्वी पर, पांचों चीजें हैं ये पृथ्वी विश्व के धारण करने वाली, इसलिए कही गई ये चारों पांचों चीजें। पृथ्वी ने कहा कि हमारी भी थोड़ी गंध ले लो, आकाश ने कहा हमें जरूरत नहीं। इसलिए आकाश को आत्मा परमात्मा भगवान का रूप बताया गया, चिदाकाश में देह तुम्हारी। क्योंकि आकाश को किसी की जरूरत जैसे नहीं है, तैसे परमात्मा को भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और परमात्मा का ज्ञान करने वाले संत को भी जरूरत नहीं है संसार की, संसार कोई उसकी जरूरत है। ये बात समझने की है, संसार को उसकी जरूरत है लेकिन उसको संसार की जरा भी जरूरत नहीं। कैसे? जैसे आकाश को, आकाश को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, तुम हमसे ले जाओ। क्या उदारता है आकाश की, आप देखिए जैसे आप लोग उदार हैं। एक होता है उदार, एक होता है उधार। तो हम क्यों कहें आप लोग उधार हैं, हम तो उदार है कहेंगे। तो बात एक है, ये उदारता क्यों है? दूसरे से ना ले करके और अपना दे देना, यही तो मानवता है। ये देखो सीखने की, हमसे ले जाओ जो चाहो सो, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये आकाश ने कह दिया। वही आत्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है स्वयं कुछ नहीं चाहिए। जो आप मनीराम ले आए, इंद्रियां लाए, घसीट घसीट के लाती हैं, कहते हमें कुछ जरूरत नहीं, तुम ही अपने अपने खाओ पियो। ले आए मिठाई, लाए जीव तुम खा लो, आज आत्मानंद को कोई जरूरत नहीं। तो ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों प्रकार की भगवान की है, ये बात समझे रहना चाहिए। ये भगवान स्वयं ठेका लेके कहते हैं, और क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, वो जो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा जो हरेक शरीर में प्रतिबिंब की तरह विराजमान है, वो भी हम ही को समझो। मैं आपको निवेदन कर चुका कि समुद्र कहता है दो बूंद भी पानी कहीं भरा है तो मेरा ही रूप है। तो जैसे समुद्र कहता है एक गिलास में गंगा जल भर लाए, गंगा जल भर लाए, बोले गुरुजी ने कहा कि बेटा गंगा जल है, बोले ये गंगा जल, इसमें तो ना नावें चल रही हैं, ना लोग हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, और ना मछलियां हैं कछुआ हैं, गंगा जी में तो खूब है। बोले ये बात तो सही है, लेकिन ये गंगा जल ही है, इसका जो आधार है गिलास वो छोटा है, इसलिए इसमें नावें नहीं चल रही हैं। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा है। गिलास की सीमा में आबद्ध जो जल है वो गिलास का जल है, गंगा जल। इसी प्रकार से शरीर की सीमा में जो आबद्ध है, गौरवदा बनाए रखा है, उसमें जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश। इसलिए परमात्मा का अंश समझना चाहिए। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 25 जनवरी शुक्रवार बड़ी सजधज के साथ यहाँ स्टेज सजा हुआ है बाल महोत्सव के लिए। और जैसे महाराज जी ने बताया, प्रेमपुरी में जितने भी सत्संगी और जो भी आते हैं बड़े उदार हैं, कोई इसमें उदार नहीं है। और उसी रीत से यहाँ जो नाम भी लिखा हुआ है, उनके ही तरफ से जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा सज धज कर आज बाल महोत्सव के लिए तैयार हो गया है। और उसी नाम भी इतना प्यारा है, बिंदु और बूंद बूंद से सागर। तो यहाँ जो सुविनियर वगैरह की भी जाहिरात होती है उसमें एक बड़ी अच्छी तरह से आपका जो भी सहयोग मिल रहा है। तो हरेक को यह समझना चाहिए कि बूंद बूंद से सागर होता है और उसी बूंद को लेकर हमें आगे जाना है। आपसे आपके पास उसकी डिटेल है ही है, तो जितनी जल्दी हो सके सुविनियर की जाहिरात वगैरह यहाँ पहुंचा दे कार्यालय से। कई अच्छे कार्यक्रम होने जा रहे हैं जिसमें स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित, प्रेमपुरी बाल संस्कार केंद्र संचालित, श्रीमती बिंदु हेमेंद्र कोठारी बाल महोत्सव 2008 का जो आज से रविवार दिनांक 27 जनवरी तक संपन्न होने जा रहा है, उसकी उद्घाटन विधि बराबर 9:30 बजे श्रीमती निलूफर अहमद द्वारा होगी। करीब 4000 स्कूल के बच्चों द्वारा यह नेत्र दीपक कार्यक्रम प्रतियोगिता आपके सामने प्रस्तुत होती जाएगी। बच्चों को प्रोत्साहित करने आप बड़ी से बड़ी संख्या में हाजिर हो। यह कार्यक्रम आज से 9:30 बजे से उद्घाटन विधि के बाद प्रतिदिन यानी 25, 26, 27 रविवार तक प्रातः 10 से 6 के दरमियान होगा। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।